एक बात हम सभी इस जस्तुजू में रहती हैं कि सूरह नूर की आयत है कि एक ताक है, उसमें चराग रखा है और चराग एक बोतल में है, वो बोतल एक फानूस में है, और उस चराग में जैतून का तेल है जो ना शर्की है ना गर्बी है। असल में उसके बारे में हम थोड़ा सा गलतफहमी में मुब्तला हैं। ना तो वो चराग अलादीन का चराग है कि उसको रगड़ के हम उसके जिन के जरिए से महल्लात खड़े कर लेंगे, ना कोई वो ऐसा चराग है कि जिसको हम जलाएं तो जिन्नात हमारे इर्द गिर्द आ जाएं और उनसे हम अपने दुनियावी काम कराने शुरू कर दें। ना वो चराग तमसीलन बयान किया गया है कि कोई वो ऐसा हर्फ है कि जिसको पढ़ने से हमारे सारे दुनियावी काम हो जाएंगे, ना वो तमसीलन इसमें आजम को जाहिर करता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी तमाम तर जस्तजू सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती है कि किसी तरह से हमारे दुनिया वो गालिब के ख्वाहिश आम अच्छे हों और बहुत से हों, तो उसके मसदाक हम ये चाहते हैं कि दुनिया बेहतरीन हो और वाफिर हो, उसका ताल्लुक उन चीजों से नहीं है। ये असल में रब ताला ने एक चीज बयान की जो आमतौर पर किताबों में नहीं मिलेगी। जहां रब ताला ने ये फरमाया कि उसके नूर ने जमीन व आसमान को अपने घेरे में लिया हुआ है, वहीं उसने इस चीज को भी जाहिर कर दिया कि किसी शख्स में ये इस्तादाद नहीं है, ये इस्तात नहीं है, ये सकत नहीं है कि वो अल्लाह के नूर को बराए रास्त बर्दाश्त कर पाए। नूर गरचे ठंडा होता है, लेकिन जिस तरह से हम अगर बर्फ की एक डली अपने हाथ पे रखें और उसको आधे मिनट तक रखे रखें तो पहले शुरू में हमें ठंडक महसूस होती है, लेकिन उसके बाद हाथ में जलन शुरू हो जाएगी हमारे। तो नूर की ठंडक उसी तरह है जैसी ये बर्फ, मिसाल मैं दे रहा हूं, उसको एग्जैक्टली वो नहीं है, ये सिर्फ वाजे करने के लिए कि उस नूर से भस्म कैसे हो जाएंगे, इंसान भी और पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, कि नूर ठंडा है, उसमें ठंडक है, लेकिन वो ठंडक ऐसी है कि अगर बिलावास्ता कहीं देख ली जाए या बिलावास्ता उससे हमें वास्ता पड़ जाए तो उसकी ताब हम नहीं ला पाते हैं। तो वो जो सूरह नूर में चिराग की मिसाल दी, वो ताक में है, फिर बॉटल में है, उसमें फानूस में है, वो असल में शो ये कर रहा है कि वास्ते हैं इंसान के और रब के नूर के दरमियान, ताकि वो काबिले बर्दाश्त हो जाए। हकीकत यह है कि रब ताला के नूर के इर्द गिर्द 700 हिजाब हैं, 700 पर्दे हैं। तो इंसान का वास्ता वो 700वां जो गलाफ है उससे पड़ता है। तो मुझ जैसा गुनाहगार शख्स तो 700 बल्कि 699 पर्दों में से छन के आने वाले नूर की ताब नहीं ला सकता, तो डायरेक्टली कहां ले आएगा। तो वो उन वास्तुओं को जाहिर किया है। अलबत्ता ये जरूर है कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे मौजूद हैं जो रब ताला की इताअत और रब ताला की इबादत, उसका जिक्र करते करते इनामात पाने लगते हैं रब की तरफ से, और वो इनामात ऐसे हैं कि वो उस नूर के करीब होते जाते हैं। उनके और अल्लाह के नूर के दरमियान जो 700 पर्दे हैं, 700 फिल्टर्स हैं या 700 स्क्रीन्स हैं, वो कम होती चली जाती हैं। ये कहना तो शायद बहुत मुश्किल होगा कि कितनी कम हो जाती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इंसान रब की बंदगी के किस मकाम पर है। ये शर्फ सिर्फ एक ही हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हासिल हुआ कि सिर्फ उनके और रब ताला के दरमियान जब अर्श मौला पर गुफ्तगू हुई मेराज शरीफ के जमाने में, तो सिर्फ एक मुहीन सा पर्दा था, ये इसी पर्दे को रेफर किया है। 699 पर्दे उठ गए हुए थे, लेकिन ये शर्फ सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तमाम पैगंबर बड़े जलील कद्र हैं, वाजिबुल एहतराम हैं, बहुत बुलंद मकाम पर बैठे हैं सारे के सारे पैगंबर, लेकिन पैगंबरों में भी ये मकाम कोई और दूसरा पैगंबर हासिल नहीं कर पाया कि अल्लाह के और उस पैगंबर के दरमियान सिर्फ एक मुहीन सा पर्दा हो, वहां भी हिजाबात कायम रहे। इसलिए ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदगी के आला तरीन मकाम पर थे, कि बंदगी के उस मकाम को चले गए जहां इनामात की बारिश इतनी हो गई कि अल्लाह के नूर में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के दरमियान सिर्फ एक पर्दा रह गया, 699 उठ गए थे। लेकिन ये मकाम हासिल होता है इंसान को कि वो 700 में से कितने पर्दे उठ जाएं, 1, 2, 4, 6, वो मकाम हासिल होगा इंसान को सिर्फ और सिर्फ बंदगी के जरिए से। इसमें गौर करने की जो चीज है वो ये लफ्ज बंदगी है, इबादत नहीं है, बंदगी है। और बंदगी अल्लाह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हुक्म की तामील, और वो भी निहायत खुशदिली के साथ, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, वो तामील बंदगी है। और उन अहकामात में इबादत भी है, उन अहकामात में हकूकुल इबाद भी हैं, उन अहकामात में और तो और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी है। तो जब इंसान इन तीनों चीजों पर चला जाएगा तो बंदगी की राह पर निकलता है, और रब के हजूर जो बंदगी है वो हमेशा गैर मशरूत होती है, अनकंडीशनल सरेंडर में जब तक नहीं जाएगा इंसान बंदगी नहीं कर पाता। ये जितने भी फकीर लोग हैं इन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तस्बीहात पर जोर नहीं दिया है, इनका मेजर एम्फेसिस खिदमत खल्क पर रहा है। उनकी डीलिंग्स दूसरे इंसानों के साथ कैसी हैं, किस मकाम की हैं, उनका जोर उस पर रहा, मेजर एम्फेसिस उस पर था, और इबादत वो रात के अंधेरे में तन्हाई में सिवाय फर्ज नमाजों के जो ऐलानियां पढ़ी जाती हैं। बार बार मैं एक ही बात कहने की कोशिश करता हूं, और वो ये है कि हमें अपने जहन से ये निकालना होगा कि तस्बीहात से रब मिल जाएगा, वज़ाइफ से रब मिल जाएगा, नहीं मिलता, बंदगी से रब मिलेगा। उसकी गैर मशरूत गुलामी, उसके सामने गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर देने से रब मिलता है। आज के जमाने में मैं और आप तस्बीहात पर जोर इसलिए देते हैं कि इसमें मेहनत कम है, इसमें कुर्बानी नहीं कोई करना पड़ती। तो जहां कुर्बानी है उस एरिया को हम दरमियान में से हटाने की कोशिश करते हैं कि हम हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह की अदायगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही खुशदिली से करें तो उसमें कुर्बानी बहुत है। लेकिन तस्बीहात में कुर्बानी नहीं है, बल्कि उल्टा एक फायदा है कि अगर मैं तस्बीह लोगों की मौजूदगी में करूं, पढ़ूं, लोग मुझे तस्बीह के दाने रोलते हुए देखें या मेरी होंठ हिलते हुए देखें तो लोग मुझे नेक समझ के सलाम करने लगेंगे, लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे। हालांकि यही चीज कि लोग मुझे सलाम करने लगे मुझे तबाही की तरफ ले जाएगी, ये मेरे अंदर तकब्बुर ले आएगी ये बात, और जहां तकब्बुर आया सब कुछ बहा के ले गया सैलाब की तरह। रब ताला ने मेहनत पर बहुत जोर दिया है। मैं तो अक्सर वक़ात यही रवैया रखता हूं जो आपसे अर्ज करने लगा हूं कि अगर कोई फकीर मुझसे कुछ मांग ले या कोई मेरा भाई बंद आ जाए और मुझसे मदद की दरख्वास्त कर दे तो मैं सुनी अनसुनी एक कर देता हूं, इसलिए कि जेब से पैसा निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। और अगर मेरे पास बैठा हुआ कोई साथी मेरी तवज्जो दिला दे कि ये आपसे मदद की दरख्वास्त कर रहा है, कुछ मदद इसे कर दें, तो मैं फौरी तौर पर कहता हूं कि मैं जरूर मदद करूंगा, बशर्ते कि रब ताला मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमा दे। मुझे आप कहिए कि ये लोग भूखे हैं, इनको खाना खिला दें, तो मैं फौरन आपसे कह दूंगा कि हाँ, मैं जरूर खाना खिलाऊंगा अगर अल्लाह मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमा दे। मुझे आप मेरी तवज्जो दिलाइए कि पड़ोसी की छत गिर गई है, आप इसकी मदद कर दीजिए, कि मैं जरूर इसकी मदद करूं मगर मेरे पास है कुछ नहीं। इसी अगर और मगर को मौलाना रोम ने यह कहा कि ये काहिलों के बहाने हैं, ये उन लोगों के बहाने हैं जो काम करना नहीं चाहते। जो अल्लाह के बंदे हैं वो इस अगर और मगर में नहीं पड़ते। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने रिज्क उनको अता फरमाया है उसी में वो दूसरों को शेयर करवा लेते हैं। आ जाइए बिस्मिल्लाह, जो है मैं और आप तकसीम कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो वो अपनी भूख ही तकसीम कर लेंगे दूसरे के साथ। कि अगर उनकी भूख दो रोटी की है और उनको एक रोटी मुयस्सर आई है तो एक रोटी खा के भी वो भूखा ही रहेगा, तो उस एक रोटी को तकसीम कर लेगा दूसरे आदमी के साथ, आधी आधी कर लेगा। तो यूं उसने अपनी भूख दूसरे के साथ तकसीम कर ली। ये वो लोग हैं जो वाकई नेक लोग हैं, मेरी तरह दुकान सजा के नहीं बैठे हैं, ढोंग नहीं रचाया हुआ, नेकी की राह पे चलने वाले लोग हैं। अगर हम उस नूर का नजारा करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उस नूर के और हमारे दरमियान 700 पर्दे न रहें, चलिए एक दो ही कम हो जाएं, तो उसका सिर्फ एक ही हल है, कोई शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल, और वो है कि इंसान बंदगी कर ले अल्लाह की। इस अगर और मगर से मुझे एक बात, मौलाना रोम का नाम लिया तो उनकी एक बात याद आ गई मौलाना रोम की। मौलाना रोम ने एक हकायक बयान की कि एक साहब को मकान दरकार था किराए पर, मिल नहीं रहा था। एक दोस्त से जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बहुत ही आलीशान मकान है, किराया भी बिल्कुल बड़ा इनाम है और फौरी तौर पर अवेलेबल है, आप रिहायश रख सकते हैं उसमें, तो अगर आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूं आपको। ये साहब बड़े खुश हुए और अपने उस दोस्त के साथ मकान देखने चले गए। वो उन्हें एक पुरानी हवेली पर ले गया, बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन वो कभी किसी जमाने में हवेली रही होगी, अब सिर्फ खंडर थे। तो उन्होंने दिखाया कि देखिए ये है जगह जहां किसी जमाने में ड्राइंग रूम हुआ करता था, ये वो जगह है जहां किसी जमाने में टीवी लाउंज होता था, ये बेडरूम्स हैं, तो आप ये वाला जो कमरा है इसकी छत आधी गिरी हुई आधी सलामत है, आप इसमें रिहायश रख सकते हैं बशर्ते कि आप इसकी छत पूरी करवा लें। तो उन साहब ने अपने दोस्त से कहा कि ये अगर और मगर तुम्हें मुबारक हो, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं अगर और मगर में नहीं फंसता, मैं तो दो कमरे का मकान किराए पर लूंगा और रहना शुरू कर दूंगा। तो वो मौलाना रोम ने जहां ये कहा कि अगर और मगर सिर्फ सुस्त लोगों के काम है, काहिल लोगों के काम है, उसको वादे किया अपनी शिकायत के जरिए मकान वाली। हम इस किस्से में ना पढ़ें कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, अल्लाह ने क्या हमें अता फरमाया और हमें कितना चाहिए, क्योंकि हम में से हर आदमी को दुनिया तो बड़ी वाफिट चाहिए। तो हम सीधा सीधा जो कुछ है हमारे पास अगर उसी से दूसरे बंदों की खिदमत करने लगें तो रब ताला बरकत अता फरमा देता है, और वो बरकत भी इस पाए की होती है कि इंसान हैरान होता है कि ये आ कहां से रहा है, समझ ही नहीं आती कि रिस्क आ कहां से रहा है। एक साहब मुझे मिले वो यूके में, उन्होंने बड़े लंबे लंबे फैशन के तौर पे बाल रखे हुए थे शोल्डर तक, और जीन पहनते थे उस पर एक शर्ट, और दोनों ही कपड़ों के बारे में उनका रवैया ये था कि जब वो चीथड़े बन के जिस्म से लटक जाएं तो वो उसको उतार देते थे, दरमियान में धोते नहीं थे, वो फैशन था। तो जब वो जरा मेरे करीब आए तो पता चला कि मजहब के नाम से ही उन्हें चिढ़ है, थे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लेकिन मजहब के नाम से ही चिढ़ते थे बड़ी शिद्दत के साथ। तो ऑफिस के काम के सिलसिले में उनसे वास्ता पड़ा था मेरा। कुछ दिन के बाद कुछ एक दो ऐसे वाकयात पेश आए कि उनके तजस्सुस की हिस बड़ी बेदार हुई, और वो मेरे साथ जिद करने लगे कि ये क्या है ये क्या है ये क्या है। तो एक दिन मैं ऐसे ही किसी परेशानी में होऊंगा तो कुव्वते बर्दाश्त जरा कम हुई भी होगी, तो मैं भड़क उठा और मैंने उनसे कहा कि ये क्या आपने लगाया हुआ, ये क्या है ये क्या है, किस किस चीज को पूछेंगे, ये लें। तो उन्होंने जब बयक वक्त बहुत सी चीजें देखी तो इस्लाम की तरफ रागिब हो गए दोबारा से, तो उस पर वो खुले, जिसको मैं ये समझा था कि ये शायद फैशन के तौर पे कपड़े धोते नहीं नहाते नहीं बाल लंबे रखे हुए हैं, तो पता ही चला कि उन पे बुरा वक्त आया हुआ है, बैंकरप्ट हो गए हैं, वो 10 पाउंड महीने में गुजारा करते हैं। और वो भी बात उनकी जुबान से यूं निकल गई कि जब उन्होंने कहा कि मुझे बताइए शाह साहब मैं कुछ मजहब की तरफ आना चाहता हूं और पीछे जो कुछ मैं करता रहा उसका मदावा चाहता हूं कि मैं उसका कुफारा अदा कर दूं, तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा आसान सा काम है, जहां कोई भूखा शख्स होमलेस मिल जाए उसको खाना खिला दीजिए। तो कहने लगे कि साहब मैं जरूर खिला दूं, मैं तो 10 पाउंड में गुजारा करता हूं महीना भर। तो निहायत बेवकूफ इंसान की तरह बगैर कुछ सोचे समझे उनसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उसी 10 पाउंड में खुद भी गुजारा कर लीजिए और जहां कोई मिले उसको खाना खिला दें। कुछ ही अरसे में देखा कि वो नए कपड़े पहनने लग गए हैं और बजाय पैदल चलने के ट्यूब पर सफर करने लगे हैं, फिर दूसरों की माली मदद करने लग गए बगैर नौकरी के। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब लोग बड़ा शक करते हैं मुझ पर कि इतना मैं खुला खर्च कैसे करता हूं, जॉब तो करता ही नहीं, तो अब इसका क्या हल करूं। तो उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा कर लें कि बड़े नाम कोई एक जॉब कर लीजिए कि लोगों को बता सकें कि मैं ये जॉब करता हूं। उन्होंने वो जॉब हाथ में पकड़ ली। तो अभी कोई 4-5 साल पहले एक दिन मैं वहां गया हुआ था यूके, तो मिले मुझसे, तो बड़ी खुशी से एक लेटर जेब से निकाल के दिखाया कि कंपनी ने मुझे इंक्रीमेंट दिए, सालाना इंक्रीमेंट। तो मैंने पढ़ा तो 2,500 पाउंड पर मंथ इंक्रीमेंट थी उनकी। तो कहने लगे कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, जाता हूं नहीं, यहीं से टेलीफोन पे काम कर लेता हूं घर से। तो ये उन्होंने 2,500 पाउंड और पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 5 लाख रुपए बन गए, 5 लाख रुपए की इंक्रीमेंट दी है। तो वो एक वसी रिस्क उनके पास रब ताला ने देना शुरू कर दिया। हम जब अल्लाह के बंदों की खिदमत करने लगते हैं, और ऐसे बंदे जो माली लिहाज से बहुत ज्यादा खुश नसीब नहीं है, हम बड़े इत्मीनान से कह देते हैं कि वो बेचारा गरीब है, भाई वो कैसे गरीब है? वो गरीब नहीं है, नवाज शरीफ साहब और दाता साहब के सड़क पर बैठकर भीख मांगने वाला दोनों एक बराबर हैं। इसलिए कि नवाज शरीफ साहब अगर 400 अरब रुपए की मिल्कियत रखते हैं तो वो भी रब से ही लेकर रखी है, अपनी तो उनकी भी नहीं है, वो भी भिखारी हैं। नवाज शरीफ साहब भी रब के दर के, मंशा साहब भी रब के दर के भिखारी हैं, रब से लेते हैं, रब ही से मांगते हैं, वो भी देने वाला उनको भी रब है। तो जो सड़क के किनारे बैठ के भीख मांग रहा है वो भी रब ही से मांग रहा है। तो एक भीख मांगने वाले को यह हक किसने दिया कि दूसरे भीख मांगने वाले को यह कह दे कि वो बेचारा गरीब है? इसलिए कि मैं और आप हम सभी अल्लाह के दर के भिखारी हैं, सब हम अल्लाह ही से मांगते हैं, हमारा जाति किसी का कुछ नहीं। हो सकता है कि आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक ना हो, लेकिन यहां मैंने एक हकायत सुनाई थी, जो बादशाह सजा देना चाहता था अपने वजीर को करप्शन पर, लेकिन उसके पास चूंकि सबूत नहीं थे तो उसने वजीर से कहा कि तुम्हारी करप्शन के बारे में मुझे कन्फर्म है कि तुम करप्शन करते हो, लेकिन चूंकि सबूत नहीं तो मैं तुम्हें सजा दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें स्पेयर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किसी और ट्रैप में सजा जरूर दूंगा। अब वो ट्रैप ये है कि मैं तुमसे 3 सवालों के जवाब पूछ रहा हूं, ये अगर तुमने 48 घंटे में मुझे जवाब न दिए सही तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, क्योंकि इतना नालायक वजीर मैं अपने दरबार में रख नहीं सकता। तो पहला सवाल जो बादशाह ने वजीर को दिया वो ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, और दूसरा सवाल ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, और तीसरा सवाल ये था कि इंसान रब ताला के अहकाम के बरखिलाफ कब कदम उठाने लगता है। तो एक लंबी हिकायत है, आप में से कुछ साहिबान ने सुनी होगी अगर उन दिनों यहां थे। तो उसमें जो दूसरा सवाल था उसका जवाब जो फकीर ने उनसे सुझाया वो ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये चीज मेरी मलकियत है, इसलिए कि जो चीज किसी की मिल्क होती है, किसी चीज को वो ओन कर रहा होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो मरने पर उसके साथ जाना चाहिए उसे। इंसान खाली हाथ आया था, खाली हाथ वापस जाता है, जो कुछ उसको यहां अता हुआ रब की तरफ से वो इस दुनिया में उसके इस्तेमाल के लिए था। ये बिल्कुल इसी तरह कि मैं और आप जब किसी होटल में जाके ठहरते हैं तो उस होटल में कमरे के अंदर दुनिया भर की आसाइश होती है, उसमें टीवी स्क्रीन है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, स्लीपर्स हैं और इसी तरह दूसरी चीजें हैं, वहां हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अपना सामान लेकर जो आए होते हैं वही सामान लेकर हम वापस चले जाते हैं। उस होटल कमरे की कोई चीज, उसकी एक पेंसिल तक हम नहीं ले जा पाते। तो इसी तरह जो चीजें हमें यहां आता हुई रब ताला की तरफ से, क्योंकि हम खाली हाथ आए थे तो रब ने मेहरबानी फरमाई कि जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत कुछ अता फरमा दिया, और जब हमारा यहां ठहरने का वक्त पूरा हो गया, बुलावा आया वापसी का, तो उसी तरह खाली हाथ लौट गए। तो यूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि ये चीज मेरी मलकियत है, मैं इसे ओन करता हूं। तो दो भिखारी जो अल्लाह ही के दर के भिखारी हैं, एक भिखारी को रब ताला ने भीख में बहुत वसी रिस्क अता कर दिया है, दूसरे भिखारी को उतना वसी रिस्क अता नहीं किया। लेकिन यह हक ज्यादा रिस्क हासिल करने वाले फकीर के पास भी नहीं है कि वो दूसरे को करीब कह दे, क्योंकि भिखारी तो दोनों ही है किसी का कुछ नहीं, तो अमीर और गरीब का सवाल क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं द पर्सन हु इज लेस फॉर्चुनेट एज फार एज फाइनेंसिस आर कंसर्न। तो जो बंदा लेस फॉर्चुनेट लोगों की खिदमत करता है उस रिस्क से जो रब ताला ने उसे अता किया है, तो रब ताला रिस्क को बढ़ा देता है। गैब से रिस्क आने लगता है, समझ ही नहीं आती कि आ किस किस जरिए से रहा है। और इसके साथ साथ मैं और आप एक जुर्म करते हैं बहुत बड़ा। रब ताला हमारी सारी जरूरतें पूरी करता है, सुबह से शाम तक हमें बहुत कुछ अता करता है। एक जो ख्वाहिश पूरी नहीं होती महीने भर में, हमें सिर्फ वही याद रहती है। हम उन तमाम चीजों को भूल जाते हैं जो अता हो चुकी हैं। तो अगर लाखों चीजें अता हो गई और एक चीज अता नहीं हुई, तो हमने उस लाखों अता हुई चीजों को तो याद न रखा। जो एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई वो न सिर्फ याद है, बल्कि हम बौलाए बौलाए फिरते हैं, जगह जगह दौड़े जाते हैं कि मेरे लिए दुआ कर दें कि ये मिल जाए, मेरे लिए दुआ कर दें ये मिल जाए। तो इसको जरा सा हम गहराई से देखें तो पता ये चलेगा कि हम नाशुक्रगुजारी के मकाम पर चले गए। ये नाशुक्रगुजारी है, रब का शिकवा है कि हम उसका जिक्र ही नहीं करते जो बेतहाशा वो हमें दे चुका। एक बात को याद रखते हैं और लोगों से जाके कहते हैं रब ने वो नहीं दिया, रब ने ये काम नहीं किया, तो हम रब की शिकायत बयान करते हैं उसके बंदों के सामने, रब का शिकवा बयान कर रहे हैं उसके बंदों के सामने जो हमें सजावार नहीं है। इसी के लिए रब ताला ने कहा कि वो लोग जो मेरी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते हैं उनकी नेमतें बढ़ा दी जाती हैं, और जो शुक्र अदा नहीं करते उनसे नेमतें छीन ली जाती हैं। तो नेमतों की शुक्रगुजारी का बेहतरीन अंदाज जुबान नहीं है, बेहतरीन अंदाज यह है कि हम अपने दूसरे भाई बंधुओं के काम आते जाएं उन नेमतों के जरिए से, कि ये चीज हमें याद रहेगी कि मेरी मलकियत नहीं, मेरे रब की मलकियत है, ये मेरे रब ने अता की है, मैंने खुद नहीं हासिल किया इसे। और खास तौर पर उन लोगों को जो हमारे मुखालिफ हैं, जब हम उनके मुश्किल वक्त में काम आते हैं तो नेमतें बढ़ा दी जाती हैं उन पे। रब को ये चीज बड़ी पसंद आती क्योंकि वो इकरार है इनडायरेक्ट इस बात का कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है। इस पे अल्लाह के सब बंदों का हक है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों नहीं। ये है शुक्रगुजारी का एक बेहतरीन अंदाज। ये याद आपको रखने में हेल्प करेगा कि मेरा कुछ नहीं, ये सिर्फ रब का अता करदा है, और यही शुक्रगुजारी है। ये मजे का सवाल है। किसी साहब ने फरमाया है कि जब फकीर के अहबाब में हुक्मरान भी हों और उनके दौर में 14 अफराद बेगुनाह कत्ल कर दिए जाएं, जिनमें खवातीन भी शामिल हों, तो क्या फकीर पर फर्ज नहीं कि हुक्मरानों को समझाए कि हुकूमत छोड़कर मुकदमे का सामना करो? क्या हुक्मरान फकत फकीर से दुआ ही लेने आए? फकीर का फर्ज क्या है? साहब, पहली बात तो यह है कि अगर कोई फकीर है तो उसके अहबाब में हुक्मरान शामिल नहीं होते। तो पहले तो यह फैसला कर लिया जाए कि फकीर के दर पर आने वाले लोग उसके अहबाब हैं या दूसरों की जरा दुआ कराने वाले। दूसरी बात, फकीर सुन्नत पर अमल करता है, डंडा इस्तेमाल नहीं करता। वो अपने किरदार से दूसरों को रब की तरफ बुलाता है, यही सुन्नत है। तीसरी बात कि अगर जबर से काम लिया जाए तो ये आप भी जानते हैं कि जबर से लोग दूर भागते हैं, तो उनके आने से अगर रफ्ता रफ्ता कोई तब्दीली उनमें कहीं आ भी रही है तो जबर के इस्तेमाल से जब वो भागेंगे तो वो तब्दीली भी जाती रहेगी। एक जमाने में यहां जिक्र हुआ था कि दुनिया में तीन चीजें हैं, झूठ, सच और हकीकत। झूठ तो बड़ा सीधा सीधा मामला है कि हर वो चीज जिसको उस तरह बयान किया जाए जैसे वो है नहीं। हकायक के मुनाफी जब बात की जाए तो वो झूठ है। लेकिन मसला बनता है सच्चाई और हकीकत के दरमियान। ये जरूरी नहीं कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो हकीकत भी हो, वो सच तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हकीकत भी वही हो। मैंने जब इस मौजू पर बात हो रही थी तो एक मिसाल मैंने दी थी कि एक शख्स अगर शराब पी रहा है बैठा, और मैं वहां गया, क्योंकि पाकिस्तानी हूं और मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मेरे अंदर ये अल्लाह ने वस बहुत रखा है कि मैं उल्टे पांव बाहर जाके सड़क पर खड़ा होकर हर गुजरते हुए को बताऊंगा, देखो वो आदमी अंदर शराब पी रहा बैठा। पर्दापोशी तो मैं कर नहीं सकता किसी की, गीबत से बाज रह नहीं सकता मैं। अब वो बात सच है कि वो बंदा बैठा शराब पी रहा है, लेकिन अगर उससे मैं पूछ लूं कि भाई तुम ये शराब पी रहे हो, अल्लाह ने मना किया, तो हो सकता है वो मुझे ये कहे कि मुझे जोड़ों के दर्द का मर्ज हो गया है सर्दी की वजह से, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ये इतनी मिकदार में शराब रोज पी लो, वो मैं पी रहा हूं। अब सच्चाई क्या थी कि वो शराब पी रहा है, हकीकत यह है कि दवा पी रहा है। तो हम जाहिर में देखकर उसे ही सच्चाई और हकीकत समझ लेते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिए कि फकीर के अहबाब में हुक्मरान कभी शामिल नहीं होते। एक बात, फकीर हुक्मरानों के दर पर नहीं जाता, ये हुक्मरान हैं जो फकीर के दर पर आते हैं। तो पहले तो ये फैसला कर लीजिए कि अगर कोई फकीर आपको ऐसा दिखाई देता है जहां हुक्मरान आते हैं, तो ये जांच लीजिए कि वो फकीर वहां गपशप मारने आते हैं या उससे दुआ कराने आते हैं। तो अगर तो वो वहां दूसरे लोगों की तरह दुआ कराने आते हैं तो अहबाब नहीं है। फकीर का दरवाजा खुला है, कोई आ जाए, ये सुन्नत है, वो सुन्नत पे अमल करता है कि उसका दरवाजा खुला है, कोई आ जाए। ये जरूर है कि वो फर्क नहीं करेगा एक रेड़ी फरोश में और एक सदर में, वो दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट करता है। बाज़ औक़ात वो रेड़ी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ये कह के कि आपको सलाम करने वाले हजारों हैं, इसको सिवाय मेरे कोई और सलाम करने वाला नहीं है, इसलिए मैं आप पर इसको तरजीह दे रहा हूं। किसी से पूछा है कि शाह साहब, आपकी किताब में लिखा है कि बीबी साहिबा सलामुल्लाह अलैह का नाम न लें, ये जिक्र तो हर वक्त की रूटीन है, जब हम जिक्र करें या बच्चों को बताएं तो नाम लेना ही पड़ता है, तो कैसे नाम लिए बगैर बताया जाए? देखिए, जब हम रूटीन में जिक्र करते हैं तो हम बीबी साहिबा अगर कह दें तो लोग समझ जाते हैं कि किसका जिक्र हो रहा है। अगर हम कहें कि बीबी साहिबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहबजादी, वाजे है बात, बच्चों को अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो उस वक्त अगर नाम ले लिया जाए पूरी ताजीम के साथ। वो जो किताब में मैंने मना किया है वो इस तरह किया कि हम बगैर कोई एहतरामी अल्फाज कहे सीधा सीधा बीबी साहिबा का नाम ले लेते हैं, और ये किसी पर बाइंडिंग नहीं है। इसको ये न समझिए कि किताब में लिखा है कि ये फर्ज है, ऐसी बात नहीं। उसमें आगे शायद वजाहत कहीं दी हुई होगी कि वो मैंने अपनी मर्जी से ये तरीका पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मेरी जुबान इस लायक नहीं कि बीबी साहिबा जैसी अजीम हस्ती का नाम ले सके, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ बीबी साहिबा कहता हूं। मेरे नजदीक उनका एहतराम इतना है, लेकिन यह जरूरी नहीं है आप जैसे जी चाहे नाम ले लीजिए, उसमें फर्ज थोड़ी है ये, लेकिन मेरे नजदीक वो गुस्ताखी है, इसलिए वो बहुत बड़ा मकाम रखती हैं, बहुत बड़ा मकाम है, लोगों को अंदाजा नहीं है बीबी साहिबा के मकाम का। इनका अगला सवाल मेरे ख्याल में किसी वक्त मौका मिल जाए तन्हाई में कर लीजिए, इसको बयान शायद मैं न करना चाहूं पब्लिकली, सवाल मैं पढ़ देता हूं कि दो रोशनियां तसव्वुफ में, एक तो वो जो इतनी तेज जैसे सूरज के आगे चांदी रख दी जाए तो आंखें चुंधिया देती हैं, एक वो रोशनी जो धीमी है और ऐसी, आगे मालूम ने क्या लिखा वो, प्लीज इन पे थोड़ी रोशनी डाल दें। मेरे ख्याल में इसका एक हिस्सा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नूर के बात करते हुए आपसे अर्ज किया था, लेकिन अगर तन्हाई में कभी आपको मौका मिल जाए पूछ लीजिए, मैं अर्ज कर दूंगा इसका जवाब। ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब पब्लिकली दिया जा पाए। ये एक साहब ने सवाल किया है कि जब इंसान अशरफुल मखलूकात है तो फिर उस पर जिन चुड़ैल परियों भूत और आसेब के काबिज होने की बात समझा दें। اللہ آپ کو اجازت دے بھائی، میں 30 سال سے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مخلوق جس نے مجھے سجدہ کیا ہے وہ مجھ پر حاوی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فرشتوں اور جنوں نے بابا آدم کو سجدہ کیا ہے، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ سجدہ اپنے سے بہت سپیریئر چیز کو کیا جاتا ہے، تو اگر میں جنات سے بہت سپیریئر ہوں تو وہ مجھے کیا چمٹ کے کریں گے؟ یہ در حقیقت کچھ لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن جاتی ہے بات کی، جہاں کہیں کسی شخص کو دیکھا کہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جو اس کے لواحقین کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کہ یہ جن اس پر آ گیا۔ میں 30 سال سے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اور آن ایوریج 1500 لوگ پر ویک مجھ سے ملتے ہیں۔ ان 30 سالوں میں شاید 2 یا 3 ایسے کیسز سامنے آئے جہاں جنات نے تصرف حاصل کر لیا تھا انسان پر، لیکن وہ بھی آدھے منٹ میں غائب ہو گئے، چلے گئے۔ اب وہ اس میں ایک جو صنف رکھی ہے، بلکہ 2 چیزیں، چوڑیل اور پریاں۔ اب معلوم نہیں کہ یہ انہوں نے کہیں تمثیلن تو نہیں بیان کر دیا، کیونکہ ہم لوگ جب وائف سے ناراض ہوتے ہیں تو عام طور پر اسے چوڑیل کہتے ہیں، تو اگر وہ تمثیلن بیان کر دیا ہے تو وہ تو مجبوری ہے، اب آپ نکاح کر بیٹھے بھگتی، اب اس میں کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کوئی آسان طریقہ بتا دیں۔ اس موضوع پر شاید یہاں 2 اتوار گفتگو ہوئی ہے۔ آپ جو صاحب یہاں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، صابر ملک صاحب، ان سے رابطہ قائم کر لیں یا ٹیپو صاحب سے، وہ آپ کو وہ نشست کا نمبر بتا دیں گے اور کتاب کا نام بتا دیں گے کہ کس میں وہ دونوں چیزیں گفتگو چھپی ہے، اس سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس میں آپ سے نیکسٹ سنڈے تک کے لیے بشرط زندگی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔